ओम शांति। भगवान ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया, अपना बनाया, लेकिन हम बच्चे बाबा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। जितना जितना हमारा बाबा में निश्चय होगा, नेचुरली है हम उसका सहारा लेंगे। अभी तक ज्ञान के पहले मनुष्यों का सहारा लिया, बचपन में माँ बाप का सहारा लिया, बड़े हुए फ्रेंड्स का सहारा लिया, टीचर का सहारा लिया, शादी के बाद एक दो का सहारा लिया और बुढ़ापे में बच्चों का सहारा लिया। परंतु वे सहारे सब हद के थे, अपनी शक्ति अनुसार समय अनुसार वो हमें मदद करते रहे। अब जब हम सर्वशक्तिमान को जान लिया, उनका हाथ पकड़ लिया, तो उसका सहारा लेने से हमारे में हमारी बहुत रक्षा होती है, सफलता भी मिलती है। आप में से जिन्होंने अपना बंधन तोड़ा है, कितनों ने अपना बंधन तोड़ा है, जरा हाथ उठाना। 50, 25, 50 के जिन्होंने बंधन तोड़ा है उनको मालूम है कि बाबा ने कितनी मदद की। और जैसे बाबा कहते हैं ना, हिम्मत बच्चे मदद खुदा, हिम्मत हमको रखनी पड़ती है, सामना तो बहुत करना पड़ता है। यज्ञ की हिस्ट्री देखें तो ब्रह्मा बाबा को कितना सामना करना पड़ा, अपनी ही कम्युनिटी ने विरोध किया। मेन बात तो यही है, पवित्रता। सामना इसलिए करना पड़े कि युगल में से एक आता है ज्ञान में, दूसरा नहीं आता है, तो सामना करना पड़ता है। सिर्फ युगल का नहीं, सासू ससुरा माँ बाप परिवार सब कहेंगे ये क्या। तो इसलिए पहले तो परिवार से सामना करना पड़ता है, फिर आता है अलौकिक परिवार से भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि संगठन में सेवा करनी है। ये कहेंगे ये मेरे सेंटर के हैं, मेरे सेंटर किया है, उसके सेंटर के नहीं है, ये हमारी एरिया है, वो तुम्हारी एरिया है, आदि आदि। तो ब्राह्मण परिवार से भी सामना करना पड़ता है और अंत में अपने संस्कारों का सामना करना, क्योंकि संस्कार से लड़ना पड़ता है। संस्कार बदलना पड़ता है, तो अपने संस्कारों से लड़ना पड़ता है। परंतु देखा गया है कि जिसका निश्चय बाबा में, ड्रामा में, वहीं बैठो, अभी जो पीछे आते हैं पीछे बैठना, अभी जगह नहीं है आगे। तो देखा गया है कि हो सकता है अंत तक लड़ते रहे, कोई तो है जिन्होंने अपने संस्कारों को भी एकदम परिवर्तन कर लिया है, जिस कारण अपने संस्कारों से सामना नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले बाबा हमको ये शिक्षा देते हैं, देही अभिमानी बनो। जब देह अभिमान है तो गड़बड़ होती है, विकार भी सताते हैं, अहम भी सताता है, क्योंकि अहम है लड़ना पड़ता। अहम अहम से टकराता है, वो कहेगा मैं सच हूं, दूसरा कहेगा मैं सच हूं, तो झगड़ा हो जाता है। इसलिए बाबा ने सबसे पहला हमको कहा, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। और बाप को याद करने से शक्तियां मिलती हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं तो सामना करने की शक्ति मिल जाती है। लेकिन ये देखना है अपने को पीछे नहीं हटाना, बाप का हाथ नहीं छोड़ना है। बाप का हाथ छोड़ा या पढ़ाई छोड़ी तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए आजकल बाबा पढ़ाई के ऊपर भी बहुत ध्यान खिंचाते हैं कि ऐसे नहीं किसी से रूठ कर पढ़ाई छोड़ दो, कि उनका चेहरा देखता हूँ क्लास में तो मैं अशांत हो जाता, इसलिए मैं शांति से घर में बैठकर मुरली पढ़ता हूँ। कई ऐसे करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। उठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है और अपना नियम नहीं तोड़ना है, क्योंकि बांधेलियों को मार खानी पड़ती है। घर में झगड़ा हो जाता है, परंतु जिनको बाबा में निश्चय है वो सामना करते हैं, सहन करते हैं। बम्बई में हमारे पास एक माता थी, उसका युगल बहुत पढ़ा लिखा था, संस्कृत में बात कर सकता था, शास्त्र पढ़ा हुआ था। मेरे पास आया, किस शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गृहस्थ के व्यवहार में रहते, हमारे युगल को आप आने नहीं दो। मैंने कहा ये तो मंदिर है, मंदिर में पुजारी किसी को ना नहीं कहेगा, आपको नहीं आने देना है तो आप घर में बिठा के रखो। तो जगा करके चला गया। फिर क्या हुआ कि दो चार बार उसने घर से निकाल दिया, दिन में निकाल दिया तो माँ के पास चले गए, एक रात को 10 बजे घर से निकाल दिया। अभी 10 बजे वो तो नाइट ड्रेस में थी, कहाँ जाए 10 बजे, तो सारी रात छत पर बैठी रही, क्योंकि झगड़ा भी नहीं करता है, नहीं तो ब्रह्मा कुमारियों का नाम बताओ। सारी रात बैठी रही और सवेरे जब दूध वाला आया तो उसको भाई को खोलना पड़ा घर, तब माता घर में आ गई। पर अंत में वो भाई भी ज्ञान में आ गया, उसकी लड़की भी सेंटर पर स्वाहा हो गए। तो जब हिम्मत रख कर सामना करते हैं तो बाबा की शक्ति मिलती है, और उस शक्ति के आधार पर फिर आ जाते हैं उसके घर वाले भी आ गए। ऐसे कईयों ने लड़ते लड़ते भी युगल को ज्ञान में लाया। अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है, ये बात है। तो बाबा के सर्वशक्तिवान का जब हाथ पकड़ा है, उस पर जब भरोसा है कि वो हमारा रक्षक है, साथी है, और उसके सहारे हम चल सकते हैं। श्रीमत पर चलना पड़े हमें, ये बात है कि श्रीमत पर चलना पड़े तब बाबा की मदद रहती है। तो हमें क्या करना पड़े कि जिम्मेवारी का बोझ बाबा को दे दो। यदि मैं करता हूँ ये बुद्धि में रहेगा तो बाबा भी बाजू में हो जाएंगे, कहेंगे करो तुम। तो इसी रीत से हमें ये देखना है कि बाबा को याद करके बाबा को कहना है आप मुझे करो, ये मदद करो। मुझे याद है 1950s में मुंबई में एक बहन थी, उसको हिंदी पढ़ना नहीं आता था, टीचर क्वालिटी थी। अभी 50s में तो कोई एडल्ट एजुकेशन क्लासेस नहीं होते थे कि कोई हिंदी सिखावे, और वो बहन ध्यान में जाती थी। तो उसने हट के बाबा से ध्यान में, मुझे आपको हिंदी सिखाना है। तो ध्यान में बाबा जैसे अल्फाबेट लिखकर उसको पढ़ाया और हिंदी पढ़ना सीख गए। जब ये है करना है तो सब कुछ हो सकता है। ऐसे ये हमारे सेंटर पर एक माता आती थी, गुजराती थी, गुजराती भी पढ़ना नहीं आता था, पर उसको मुरली का बहुत शौक था। तो मुरली पढ़ना सीख गए, हिंदी पढ़ना सीख गए, रोज अपने को जो शब्द नहीं आते थे क्लास में किसी से किसी के पूछ कर सीख गए। तो बाबा का कार्य है, हम निमित्त हैं, करावनहार वो है, हम करनहार है, ये बुद्धि में रखना है। तो हम बेफिक्र होके आगे बढ़ सकते हैं। और बाबा भी गारंटी करते हैं कि आप श्रीमत पर चलेंगे, पवित्र रहेंगे, तो हम आपको विश्व का बादशाह बनाएंगा, गारंटी करते। और वो गारंटी सिर्फ सत्युग त्रेता के लिए नहीं है, संगम से शुरू होती है। यहां भी कितना सुखी शांति हर्षित चेहरा होता है, पवित्रता के कारण चेहरा चमकता है। तो क्या है कि सफेद कपड़े तो पहनते ही है सब, तो यहाँ पांडव भवन में 1980s में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अमेरिका का इंडियन सन्यासी स्वामी सच्चिदानंद आए थे इंटीग्रल योगा का। उसने कहा ये सब हंस है, सन्यासी तो एक सन्यासी पवित्र रहेगा, उसके फॉलोअर कोई पवित्र नहीं रहते, परंतु यहां हर एक का चेहरा चमकता है, हंस है। तो क्या है कि बाबा ने इतनी शक्ति दी है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सब पवित्र रह सकते हैं। और हमारे सामने इतने एग्जाम्पल है जो बाबा की मदद से उनका जीवन सहज हो गया। श्रीलंका में वहाँ मुरली जल्दी शुरू होती थी, अभी भी शुरू जल्दी होती है, 5:30 योग, 6 बजे मुरली, 7 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं। तो जो सेंटर है मेन रास्ते से जहाँ बस रुकती है उससे 7-8 मिनट पैदल चलना है। और बहने हैं तो आती है ना सवेरे सवेरे मुरली में पैदल करके बस में आदि, क्योंकि जैसे भारत में है सबके पास थोड़ी अपना ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चलना होता है। तो वो आती थी रास्ते में, तो उसने देखा कि कोई आदमी है गंदी दृष्टि वाला लगता है, तो मन में ही बोलते आई बाबा तू मेरा साथी है, बाबा तू मेरा साथी हो, और चली गई, पहुंच गई सेंटर पर। उसके बाद कोई माता आई उसको इस भाई ने छेड़ा। तो फिर रेडियो में अनाउंस हुआ दिन में कि ये स्ट्रीट में इतने बजे आप में से किसी ने ऐसे कोई आदमी को देखा हो तो पुलिस स्टेशन पर आकर उसको पहचान करो। तो वो गई पुलिस स्टेशन पर और पहचाना वही था सवेरे वाला आदमी। तो उसको पूछा कि मैं तो 5 मिनट पहले उससे निकली थी, आपने मुझे तो कुछ नहीं किया, उसको छेड़ा। तो कहता तुम्हारे साथ तो कोई मजबूत आदमी था, मैं कैसे छेड़ सकता था। तो जैसे क्या होता है कि जैसी हमारी मन की भावना होती है ना, जैसी स्मृति होती है, वैसा औरों को साक्षात्कार होता। तो उसने ये समझाने कि बाबा मेरा साथी है, तो उसको साक्षात्कार हुआ कि बहन के साथ कोई साथी है। और जैसे सुनामी का तूफान आया 2000 में या 2004 में जब आया, तो सुनामी का तूफान 6 घंटे में कई देशों में वो फैल गया था, भारत में भी, साउथ इंडिया में, मद्रास के तरफ तूफान था, और श्रीलंका में तो हमारे सब सेंटर्स समुद्र किनारे, जो मेन सेंटर है कोलंबो में, तो यहाँ से हम बाहर देखे समुंदर, इतना नजदीक समुंदर है, 30 फीट के करीब होगा। तो उस सुनामी में मैं समझती हूँ करीब 2 लाख लोग मर गए, एक भी ब्राह्मण नहीं मरा। इतना ही नहीं ब्राह्मणों के बारे में, परंतु एक माता थी अज्ञानी, उसके पास 2 बच्चे थे और पानी यहाँ तक आ रहा था। उसने क्या सोचा कि एक को तो मैं संभालूंगी, भगवान तुम दूसरे को संभालना, बड़े को, छोटे को अपने गोद में रखा। और जब पानी बह गया तो वो बड़ा बच्चा भी माँ के पास आ गया, मम्मी मम्मी मैं यहाँ हूँ। मतलब भगवान पर भरोसे रखने से लौकिक को भी फायदा होता। और उसी समय हमारी कैंडी की एक माता की लड़की का थोड़े दिन पहले शादी हुई थी, तो कैंडी है हिल स्टेशन और ट्रिंको है, वो है वहाँ बीच है और काफ़ी होटल वगैरह है। तो ये लोग सब परिवार के 15-20 जने ट्रिंको गए थे और सवेरे 8 बजे के करीब आया तूफान सुनामी का। वो लोग तो वहीं थे बीच पर, सब घूमते थे, 4 माताएं बूढ़ी और ये ब्राह्मण माता एक स्थान पर खड़े थे होटल के बाहर। जब ये तूफान चला गया, 4 में से 3 माता मर गई, ये हमारी ब्राह्मण माता ही बची। तो जैसे बाबा कहता है ना, मैं बिल्ली के पुंगरों को बचा लेता हूँ, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो क्या है कि हमें बाबा पर भरोसा होना चाहिए, और कोई भी कार्य है हिम्मत का करते रहना है, हिम्मत रखनी है और बाबा को साथी बनाना है तो बाबा पार कर लेंगे। क्योंकि बाबा को कहा ही गया है रक्षणहार, रक्षा करने वाला, तो उनको साथी बनाना है तो कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और बाबा प्रॉमिस भी देते हैं कि ब्राह्मण बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, कम से कम दाल और चपाती मिल जाएंगे। तो ज्ञान के पहले मैं बम्बई में थी और 1940s-50s में जैसे पढ़ी हुई, तो उस समय लड़कियों को अकेले नए स्थान पर नहीं जाने देते थे। तो हम कहाँ भी जाते थे, हमारे साथ या तो माँ होती थी या तो भाई होता था या तो चाचा या चाचे का लड़का होता था। और जब मैं मेडिकल इंटरव्यू देने गई, उस समय भी मेरा कजिन ब्रदर मेरे साथ था। अब ज्ञान में आने के बाद, हमारे परिवार वाले ज्ञान में नहीं थे कोई, और मुझे रमेश भाई ने, बम्बई वाले रमेश भाई ने काम सौंपा कि आप कांदीवली तरफ देखो कोई मकान है, उनके प्राइस क्या है। क्योंकि बम्बई में दो सेंटर थे, दोनों फ्लैट में थे। मैं 62 में ज्ञान में आई, दो सेंटर दोनों फ्लैट में। तो कहा कि कोई बंगलो होना चाहिए, क्योंकि आश्रम फ्लैट में अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे मकान ढूंढना था, तो घर वाले तो कोई नहीं आते थे। कभी कभी कोई ना कोई ब्राह्मण आ जाता था, नहीं तो अकेला जाना भी पड़ता था एजेंट के साथ मकान ढूंढने के लिए। तो बाबा ने हिम्मत दी और मकान ढूंढा और सेंटर भी खुलवाए। और 1971 में हम विदेश गए, तो हमारा टूर था प्लान, वर्ल्ड टूर प्लान, कि इंडिया से, लंदन से, अमेरिका से, ऐसे टूर करना का था। पर लंदन में जब हम पहुंचे तो जगदीश भाई कहे कि ऐसे ही हमको चक्कर लगा कर नहीं जाना चाहिए, हमें कहाँ ना कहाँ सेंटर जरूर खोलना है। लंदन में 8-10 स्टूडेंट ऑलरेडी थे, तो हम लोगों ने बात की कि सेंटर के लिए आपकी इच्छा है। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग खर्चा करेंगे और मकान ढूंढेंगे। तो मकान ढूंढना शुरू किया। तो हम लोग सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में पहुंचे और उन्हों को मकान मिला। तो हम लोगों ने दादी को लिखा कि लंदन में मांग करते हैं सेंटर में कोई टीचर भेजो। प्रकाशमणि दादी का है कि मेरे पास कहाँ है, आप 5 जने जो ज्ञान में है, अंग्रेजी जानते हैं, आप लोग टूर पर हो, आप में से एक जाए लंदन सेवा करने के लिए। तो जगदीश भाई कहे मुझे तो मैगजीन का काम है, वापस चलना है। रमेश भाई कहे मेरा तो बिजनेस है, मुझे वापस चलना है। रोजी बहन कहे मेरी तो माँ बीमार है, मुझे तो वापस जाना है। और शील दादी कहे मेरी माँ भी, मैं नहीं जाऊंगी तो अकेली हो जाएंगी। और उनकी माँ क्वीन मदर को क्या है, नर्वस हो जाती थी तो ऐसे ऐसे करती रहती थी। तो बाकी रही मैं, और मैं मेरा भी तो डिस्पेंसरी में किसी को छोड़ के आई थी, कहा कि हम 3 मास में आ जाएंगे, तो कोई डॉक्टर संभालती थी। पर मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगी, तो अकेला रहना था फ्लैट में। और दरवाजा एक, सीढ़ी एक, ऊपर 2 भाई रहते थे वेस्ट इंडियन, और मैं नीचे अकेली, बाथरूम टॉयलेट ऊपर। तो मैं रही 6 मास अकेले। मतलब बाबा ने हिम्मत दी सब कुछ अकेले का था ना। इंडिया में तो जब गई मैं 671 में, तो हमारे पास तो स्टूडेंट थे, कुछ खरीदारी भी नहीं करने जाना पड़ता था, सब्जियां भी माताएं ले आती थी, सब कुछ हो जाता था। वहां तो सब कुछ करना, घर भी साफ करो, खाना भी पकाओ, सब्जी भी खरीदने जाओ, भाषण भी करने जाओ, और क्या है कि उनके प्रोनाउंसिएशन, भल हम इंग्लिश में पढ़ी थी मेडिसिन, पर उनके प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आते थे। तो कोई फोन करे तो मुश्किल हो जाता था जवाब देना, या प्रवचन के अंत में क्वेश्चन होता था तो उनके क्वेश्चन ही समझ में ना आए। परंतु लकीली हमारे साथ शुरू से कोई भाई नहीं आता था, तो भी प्रवचन में कोई भाई या बहन आ जाती थे तो मैं उनको कहती थी रिपीट करो, इंडियन होते हैं तो इंडियन तो इंग्लिश समझ सकती हैं इंडियन, और वो लोकल थे तो वो तो स्कॉटिश और आयरिश और सबके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं, तो ऐसे चलाना पड़ता था। फिर लंदन का वीसा पूरा हुआ तो मैं इंडिया आ रही थी, पर मेरे वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड टिकट थी, मतलब पॉइंट्स थे मेरे पास। तो लंदन के एक भाई ने कहा अफ्रीका की सर्विस बहुत अच्छी है, अफ्रीका में बहुत इंडियन है, तो आप ईस्ट अफ्रीका में जाओ। तो केन्या, युगांडा और तंजानिया, 3 देशों का, हर एक देश में 3-4 शहर, तो टोटल 11-12 शहर थे। मैं अकेली, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई पहचान वाले नहीं, मित्र संबंधी कोई नहीं। तो उस भाई ने, लंदन के भाई ने अपने एक परिचय वाले को लिखा कि ये बहन जी आ रही है, उनका आप रहने का और प्रवचन का प्रोग्राम बनाना। तो कोई लेने आता था घर में रहने का मिल जाता था, खाना पकाती थी मैं। और घर वाले कहे अभी आप दाल चावल बनाते हो, कुकर चढ़ा दो, हमारे लिए भी दाल चावल बन जाए। आटा गूंदो, आप अपनी रोटी बना लो, हम भी बना लेंगे बाकी का। दुख तो होता था उनको कि महाराज दूसरे सन्यासी वगैरह आते हैं तो हम तो रोज कुछ न कुछ मिठाई वगैरह बनाते हैं और ये बहन जी तो सिर्फ सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी बनाती है। परंतु करते रहे और वो लोग फिर हमको मीडिया में ले चलते थे, मंदिरों में ले चलते थे और बस स्टॉप पर छोड़ दिया। फिर दूसरे सामने से बस पर कोई आ जाते थे लेने के लिए। तो इसी रीत से हमने ईस्ट अफ्रीका का टूर किया, कई घरों में रहे, हर एक स्थान पर अलग अलग घर और टूर किया। फिर ऑस्ट्रेलिया से जब जा रही थी, क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में राम काका का करके अफ्रीका था वाला था, उसने सेंटर खोला। तो उसने पहले तो समझो मॉरिशियस में खोला, अफ्रीका में, केन्या में खोला, ऐसे उसने खोले और सबका खर्चा करता रहा। तो जब ऑस्ट्रेलिया में वो हमारा खर्च करता था, उसकी बेटी भी ऑस्ट्रेलिया में थी, वो बेटी कहे कि हम नौकरी करके अपना घर चलाते हैं और इन्हों को मफत में आपने सब रख दिया। तो वैसे तो वो इल्लीगल था कि वो अपने देश से अफ्रीका से यहाँ पैसा नहीं भेज सकता था ऑस्ट्रेलिया में। तो 4-5 महीना तो ठीक रहा, फिर सारे परिवार ने, उसके लड़कों ने, लड़की ने विरोध किया बाप का कि आप यदि ऑस्ट्रेलिया में खर्च देंगे हम गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे, अफ्रीकन गवर्नमेंट को। तो वो बेचारा कहे कि अभी तो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा हुआ तो डाया काका, जो उसका भाई था राम काका का, उसने मुझे कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया तक आए हैं, न्यूजीलैंड में भी बहुत इंडियन है, फिजी में भी बहुत इंडियन है, क्यों नहीं आप वहाँ चक्कर लगाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने सब संस्थाओं को पत्र लिखा न्यूजीलैंड में कि मैं आ रही हूँ, फलानी फ्लाइट से आएंगी, आप हमारा प्रवचन देने का वगैरह प्रबंध करना। तो इंडियन एसोसिएशन हर शहर में लिखा, किसी ने जवाब नहीं दिया। एक डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो यहाँ भी है ना, परंतु उसका संचालन वहाँ न्यूजीलैंड में गोरा भाई करता था, पॉसम वेट करके। तो उसने कहा ठीक है आप आ जाना, एयरपोर्ट से टर्मिनल से सिटी टर्मिनल तक बस में आना, फिर सिटी टर्मिनल पर हमारा भाई आपको लेने आएगा। मैं सिटी टर्मिनल पर 1 बजे पहुंची, कोई नहीं, टर्मिनल भी बंद हो जाता है उस रात में, तो ऑफिस आवर में टर्मिनल खुला होता है। सब अपना अपना सामान लेके अपने अपने फ्रेंड्स के साथ या टैक्सी करके चले गए, मैं अकेली रह गई। मैंने कहा अभी अंधेरे में अकेले में कहाँ तक बैठी रहूँगी, इसलिए फिर मैंने टैक्सी की और मेरे पास जो एड्रेस था वो उसके ऑफिस का था। तो टैक्सी ड्राइवर वहां लेके गया, बड़ा गेट एकदम बंद सब, पर टैक्सी ड्राइवर अच्छा रहा, उसने कहा चलो हम आपको टेलीफोन बूथ पर ले जावे। उसने कॉइन डायल कर उसने ये फोन किया, तो वो कहे कि भाई मारा भाई तो आ रहा था पर उसकी कार रास्ते में बिगड़ गई इसलिए पहुंचा नहीं है, ये हमारा एड्रेस है आप आ जाओ। तो टैक्सी ड्राइवर ने पहुंचाया वहां। अब वहां पहुंचे तो रात को 2 बज गया था, और उस मकान को एक दो मास पहले आग लगी थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और कई रूम जल गए थे। तो हमको कमरा दिया एक गौरी माता के साथ। अब उनों को तो आदत नहीं किसी के साथ रहने की, हम लोगों को तो नहीं, बचपन में तो एक कमरे में 4-5 बहनें या सब सो जाते थे इसलिए हमको तो आदत थी। और उसको फिर अपना नशा करना होता था, अभी मैं ही साथ में हूँ, बेचारी नशा भी नहीं कर सके। तो एक दो रात तो रही उसके साथ। फिर संडे को भाषण हुआ इंडियन एसोसिएशन हॉल में। उन्होंने पूछा आप लोग कहाँ रहते हो, मैंने कहा मैं तो हेंडरसन आश्रम में रहती हूँ। तो कहा कि वो तो बहुत दूर है, आप कोई इंडियन के घर में रहो फिर हम प्रोग्राम करेंगे। अब उस समय सारे ऑकलैंड में 2 घर थे जो वेजिटेरियन, बाकी सब नॉन वेजिटेरियन। तो पहली रात तो हम प्रेसिडेंट के घर रहे, क्योंकि उन्होंने ये समझा था कि ये तो काम ही रह जाएंगे, उन्हों के पास साधु संन्यासी भी तो आते रहते हैं। तो प्रेसिडेंट के घर में रखी, मैंने कहा मैं तो यहाँ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि आपके फ्रिज में नॉन वेज सब है। तो फिर वेजिटेरियन घर में प्रबंध किया। ऐसे ही वेलिंगटन में गए तो वहाँ भी ऐसे, और अलग अलग शहरों में गई मैं, ऑकलैंड से हैमिल्टन, नेपियर, प्लीमाउथ, सब स्थानों पर गई। पर जो जो स्थानों पर गई उनको मालूम था कि ये माता वेजिटेरियन है, तो घर साफ कर देते थे मेरे जाने के पहले, मीट वगैरह सब निकाल देते थे फ्रिज से। और इसी रीते टूर किए। तो समझो बाबा की कितनी मदद रहती है कि हर स्थान पर कोई लेने आता था, कोई छोड़ने आता था, और सब स्थान पर टूर किया। फिजी में भी गए, वहाँ पर भी ऐसे हुआ। और फिजी में तो ऐसे था कि पॉपुलेशन थोड़ी थी उस समय, सारे फिजी के 9 लाख पॉपुलेशन, और हर 10 माइल पर दूसरा शहर आ जाता, और एक एक शहर में 10-10 सत्संग होते हैं। कोई बाल योगी को मानता है, कोई संतोषी माँ को मानता है, कोई राम का भगत है, कोई कृष्ण का भगत है, कोई ऐसे, मतलब हर शहर में। फिर भी प्रवचन करते 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 हमने टूर पूरा किया और फिर वेलिंगटन में गीता पाठशाला शुरू हो गई और फिर गीता पाठशाला वालों ने निमंत्रण दिया, फिर भावना बहन को वहाँ भेजा और अभी भावना बहन न्यूजीलैंड फिजी संभाल रही है। पर देखा गया है कि हमारा जब बाबा में निश्चय है और हम जब ये निश्चय करते हैं कि मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है तो कोई न कोई रीत से मदद मिल जाती है और बाबा का संदेश हम पहुंचा सकते हैं। बाकी अभी यही काम बाकी रहा है कि हम मनसा सेवा द्वारा अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करें। बाबा ने तो हम बच्चों के सामने अपने को प्रत्यक्ष किया, अभी हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है और वो तब होगा जब हमारी स्थिति ऐसी ऊंची होंगी जो कोई भी परिस्थिति में हम डामाडोल ना है, अचल अडोल रहे, जो कि परिस्थितियां बहुत खराब आनी है। बाबा ने कहा है, बाबा ने तो पहले से वार्न कर दिया हमको, पांचों खंड में पांचों तत्व तूफान मचाएंगे, सिविल वॉर होंगी, एटमिक वॉर होंगी, उस समय हाय हाय नहीं करें हम, शॉक ना आ जाए, क्योंकि कई लोगों को तो क्या है, ब्लड देखकर ही बेशुद्ध हो जाते हैं। हम ऑपरेशन थिएटर में जाते थे ना, तो कई लोग देखने लिए आते थे, कांच से ऊपर से देखते थे, जिसे खून देखते थे बेहोश हो जाते थे। तो खून की नदियां बहेंगी, उस समय भी हमें ऐसा शिव शक्ति बनकर रहना है और औरों को साक्षात्कार कराना है। तो बाबा हमें इतना बल दे देगा, जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना बल मिलेगा, इतनी अपनी ऊंची स्थिति बनेगी और हम परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। ओम शांति। दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये ऐसा तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।